ज्ञानमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासदि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भगवद्गीता के पांच विषय वहां पर प्रभुपाद चर्चा कर रहे वाले हैं। भगवद्गीता पेज 7, भगवद्गीता की विषय वस्तु में पांच मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की ओर, फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ है नियंत्रित। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है तो समझो कि वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित ही है। अतएव भगवद्गीता की विषय वस्तु ईश्वर तथा जीव में जीव से संबंधित है। इसमें प्रकृति काल समस्त ब्रह्मांड की काल विधि या प्रकृति का प्राकट्य तथा कर्म की भी व्याख्या है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्य पदार्थों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्य में लगे हुए हैं। भगवद्गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्य कलाप क्या है। भगवद्गीता के इन पांच मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा आप जो चाहे कह ले सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुरु में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणार्थ जैसा कि भगवद्गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्य के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसा कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूर्यदे चराचर, भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में विचित्र विचित्र बातें घटते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत के पीछे नियंता का हाथ है। बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं। नियंता को न मानना बचपना होगा। उदाहरणार्थ एक बालक सोच सकता है कि स्वचालित यान विचित्र होता है क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है, किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वचालित यान की अभियांत्रिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति एक चालक होता है।
प्रॉपर यहाँ पर वो वर्णन कर रहे हैं आजकल बहुत ऐसे जोर से प्रचार चल रहा है कि भगवान नहीं है करके। तो भगवान है करके कैसे आप सिद्ध करेंगे? कैसे सिद्ध करेंगे भगवान है करके?
पूरा ब्रह्मांड नियंत्रित नियमित रूप से चल रहा है, शहर का ट्रैफिक है तो कोई ट्रैफिक कंट्रोलर है, इस तरह से आप कह सकते हैं।
तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बह रहे हैं ना, कह रहे हैं ना, वह परमेश्वर के उदाहरण, जैसे कि भगवद गीता में विभिन्न अध्यायों में बताया, भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। विभिन्न अध्यायों में, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ना, विभिन्न मीन्स लेटर चैप्टर्स, प्रभुपाद हैज मेंशन्ड, सो यू जस्ट नोट दिस नो, विल सी दैट हाउ टू ट्रांसलेट लेटर, बट दिस इज रॉन्ग। भगवान भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के अध्यक्षता में कार्य करती है। तो हम लोग उस दिन चर्चा कर रहे थे, आधुनिक वैज्ञानिक सोचते हैं कि भौतिक प्रकृति स्वतंत्र है और उसके जो नियम हैं वो हम लोग ढूंढ लेंगे, उसको हम लोग समझ लेंगे तो हम सब कुछ बता सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, भगवान को लेकर आने का जरूरत नहीं है, ऐसे वो लोग बोलते हैं, हमें भगवान की जरूरत नहीं है। लेकिन भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, तो प्रभुपाद बार बार कहा करते थे, प्रकृति मतलब किसके प्रकृति, नेचर बोले तो किसके नेचर, है ना, ऐसे प्रश्न उठना चाहिए ना। यह वह परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है, जैसे कि भगवान कृष्ण कहते हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, भौतिक प्रकृति मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है। तो हम लोग देखते हैं ये प्रकृति ऐसा नहीं कि इसमें बहुत सारे ऐसे चीज चल रहे हैं जो अनियंत्रित है, या हम लोग प्रकृति में ऐसा नहीं कि सब कुछ इधर उधर हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हर रोज सुबह सूरज निकलते हैं, शाम को अस्त होता है, चंद्रमा निकलते हैं, तो और अलग अलग ग्रह अपने पथ पर चल रहे हैं, ये सब हम लोग देख के समझना चाहिए कि कोई नियंत्रित कर रहा है इसको। तो जैसे हम लोग देखते हैं ट्रैफिक कंट्रोलर्स होते हैं, है ना, ट्रैफिक पुलिस होता है, वो नहीं है तो क्या हो जाता है, तो बहुत सारा दुर्घटना होने का चांसेस है, लोग इधर उधर आके टक्कर मारने का चांसेस होता है। तो हम लोग प्रकृति में ऐसे भी ऐसे नहीं देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि कोई नियंत्रण कर रहे हैं। तो नियंत्रक को नहीं मानना क्या है, वो बचपना है, चाइल्डिशनेस। तो जब हम दृश्य जगत में विचित्र विचित्र बातें करते देखते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि जगत के पीछे नियंता का हाथ है, बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं। ऐसे होता है क्या, ऑटोमेटिक, आजकल बहुत सारे हम लोग ऑटोमेटिक बहुत सारे चीज बनाए हैं, लेकिन उसके पीछे भी वो डिजाइन करने वाले हैं, और ऐसे रिमोट कंट्रोलर्स होते हैं, कोई सीधा कुछ ऐसे बटन नहीं बताते, लेकिन फिर भी कंट्रोल तो है वहां पर, है ना। तो और उसके पीछे बहुत सारा डिजाइन है, वो कैसे रेडियो वेव्स वगैरह एक्स यू ना यूज करके ये सब बनाते हैं। तो नियंता को न माना बचपना होगा, तो बिना नियंत्रण के कुछ भी हो पाना संभव नहीं है। हम लोग कोई घर ले लीजिए, कोई उसको हर रोज नियंत्रण नहीं कर रहे, उसको देखभाल नहीं कर रहे, तो कैसे हो जाता है, वो तो मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर सब कुछ इधर उधर हो जाता है। तो वैसे प्रकृति भी ऐसे है। जब हम दृश्य जगत में विचित्र विचित्र या तो नियमता को न माना बचपना होगा। और प्रॉपर एक और उदाहरण देते हैं यहाँ पर, एक बालक सोच सकता है कि स्वचालित यान विचित्र होगा, क्योंकि यह बिना घोड़े के या खींचने वाले पशु से चलता है। पहले जमाने में सभी यान पशु या घोड़े से चलते थे, आजकल वो सभी पेट्रोल के ऊपर चलते हैं, ऐसा डिजाइन किया गया है कि बाहर से देखेंगे तो ऐसे चलता लगता है कि कोई उसको चला नहीं रहे, कोई खींच नहीं रहे करके। तो कोई ऐसे सोच सकते हैं कि वो इसमें ये ऑटोमेटिकली चल रहा है करके, लेकिन फिर भी अंदर ड्राइवर रहेगा और उसको भी कोई किसी ने डिजाइन किया है ना। पशु चलता है किंतु अभिज्ञ व्यक्ति स्वचालित यान की अभियंत्रिका व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति का चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में सब कुछ चल रहा है। तो ये भगवान है। और कोई आप एक तर्क देंगे जिसके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान उपस्थित है, भगवान विद्यमान है? तो कोई भी बोल सकते हैं ना, आपको कोई भी आके पूछ सकते हैं ये सिद्ध करो कि भगवान है करके। और कुछ तर्क? वो लोग वही तर्क देते हैं कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से चल रहा है सब कुछ, हाँ भगवान से नहीं चल रहा है वो। ऐसे कुछ ऐसे बताएंगे वो लोग। वो अगला हमारा, आप शक्ति बोलेंगे, शक्ति का स्रोत कौन है, कहाँ से आया? तो ऐसे जैसे हम लोग देखते हैं ये बिजली का शक्ति है, कहीं से तो आ रहा है ना बिजली, किसी ने वहाँ पर बन रहा है ना, वो जनरेट हो रहा है ना, तो उसका स्रोत है। तो वैसे शक्ति का भी कोई स्रोत होना चाहिए, शक्ति मतलब शक्तिमान होना चाहिए, शक्तिमान के बिना शक्ति नहीं हो सकता। तो वो हमें तो कैसे करना चाहिए? और कुछ भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जैसे ये शरीर में जो आत्मा है वो पूरे शरीर में परवीड़, मतलब वो व्याप्त है सब जगह, जिसके कारण ये शरीर कार्य कर रहा है। इस तरह से जो भौतिक ब्रह्मांड है, जो विशाल शरीर है, ये जो परमात्मा भगवान है, क्योंकि वो व्याप्त है इसलिए ये कार्य कर रहा है, वरना स्वतः ये जड़ पदार्थ कार्य नहीं कर सकता। हम आत्मा को ही नहीं मानते, आप कैसे परमात्मा के बारे में बोल रहे हैं? वो ठीक है, लेकिन फिर भी वो सीधा तर्क नहीं है भगवान के अस्तित्व के लिए। वो मृत्यु एक प्रकृति का नियम है, हम लोग ऐसे बनते हैं ना। तो हम आत्मा को मानते ही नहीं है ना। वो हो गया, वो अब हम लोग एक चर्चक है, वो एक थर्क है। और कुछ
भगवान को नहीं मानता,
पोजीशन में जाते हैं तो पहले पहले भगवान तो नहीं मानते, लेकिन वो शादी शुदा होता है, शादी करते हैं तो मंत्र उच्चारण ऐसा करते हैं, तो शादी के वक्त क्यों भगवान को लेके आ जाते
हैं? ठीक है, वो इंडियन माइथोलॉजी है, वो हम लोग इंडियन माइथोलॉजी को नहीं मानते हैं, हम कोर्ट में विवाह करेंगे, है ना, ये सब जरूरत नहीं है, हम साइन एक साइन करेंगे, है
ना,
वो पुराने जमाने का वो सब फैशन है, हम लोग अभी कोर्ट में विवाह करेंगे, ये सब जरूरत नहीं है, हम तर्क तर्क चाहिए, ऐसे कुछ मत बोले, तर्क तर्क से बोले, बोले को ये भी एक गलत धारणा है, ये विज्ञान से आ रहा है, ये गलत धारणा है कि सिर्फ पृथ्वी के ऊपर जीव है, सब जगह जीव है, वो एक गलत धारणा है, वही हम लोग भगवान के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अभी जीव के बारे में नहीं चर्चा कर रहे, जीव के बारे में फिर कभी और चर्चा करेंगे। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कुछ प्रकृति के नियमों को ढूंढा है उन्होंने, है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सो लॉज ऑफ एंट्रोपी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कैसे कई सारे नियम उन्होंने ढूंढा है। तो जब हम लोग नियम बोलते हैं तो नियम को बनाने वाले कोई होना चाहिए, है ना, जैसे वही उदाहरण लेंगे तो ट्रैफिक का कुछ नियम है कि नहीं, तो हम जानते हैं उसके पीछे कोई किसी ने उसको बनाया है करके, तो नियम है तो नियम को बनाने वाले होने चाहिए, है ना, वो एक चीज है। और इस जगत में प्रकृति में देखेंगे तो सब जगह ऐसा सब जगह आपको बहुत ही डिजाइन बोलते हैं ना उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, डिजाइन, तो सब जगह डिजाइन है, इसको आधुनिक वैज्ञानिक लोग भी बहुत सारे वो वाद विवाद कर रहे हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक लोग इसको इंटेलिजेंट डिजाइन कहते हैं। तो कोई बुद्धि बिना ये सृष्टि नहीं हो सकता, बुद्धि उपयोग किए बिना ऐसे डिजाइन या ऐसे सृष्टि नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसका कोई डिजाइनर होना ही चाहिए। उदाहरण तौर पर आप घर में चपाती बना रहे, चपाती बनाने के लिए भी बहुत सारा बुद्धि चाहिए ना, वो डिजाइन, कहीं नया लोग चपाती बनाने के लिए जाते हैं तो क्या हो जाता है, रोटी बनाने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ऐसे कुछ आ जाते हैं, राउंड फिगर नहीं आता है, इसको डिजाइन कहते हैं, डिजाइन, तो उसके लिए भी बहुत सारा कला चाहिए, उसको उसके लिए बुद्धि चाहिए, उसके लिए कला चाहिए। तो प्रकृति में ऐसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स है, जटिल है, उनको इतना आसानी से नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए बहुत सारा बुद्धि का जरूरत है, तो इसको इरेड्यूसेबल कॉम्प्लेक्सिटी भी बोलते हैं, है ना, वैज्ञानिक भाषा में। तो इरेड्यूसेबल कॉम्प्लेक्सिटी मतलब इतना जटिल है ये सब चीज कि हम लोग उसको आसानी से नहीं बना सकते, उसका अर्थ है। तो इसलिए एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति ही इसको बना सकते हैं। तो बुद्धि बोले तो व्यक्ति भी है ना, तो ऐसा नहीं कि अपने आप कुछ साथ में आकर इकट्ठा होके कुछ ऐसे डिजाइन बन जाता है, चपाती अपने आप तो होता नहीं है ना, तो आटा पानी सब मिलके है ना साथ में आ गए और वो तवे के ऊपर वो अपने आप वो चपाती आ गए फिर फूल गया, ऐसा होता नहीं है, उसके लिए भी व्यक्ति चाहिए। तो डिजाइन इम्प्लाइज डिजाइनर, ये दूसरा क्या है मतलब थर्क है, थर्क लॉजिक। तो और कुछ
सो लॉ इम्प्लाइज लॉ मेकर, डिजाइन इम्प्लाइज डिजाइन, और सो कंट्रोल ऑल्सो कैन बी इंक्लूडेड इन डिजाइन. और कुछ थर्ड देना चाहते हैं? भगवद गीता में कोई वो श्लोक है ना, मत्त परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाई वा. भगवान बोलते हैं मेरे ऊपर और कोई सत्य नहीं है, मैं सर्वोच्च सत्य हूँ, सब कुछ मेरे ऊपर आधारित है. जैसे एक व्हाट इज दैट सूत्रे मणि गणाई वा, जैसे हम लोग मणि को देखते हैं, मणि वो एक नेकलेस में, मणि को रस्सी के ऊपर वो है ना डाले जाते हैं, तो बाहरी दृष्टि कौन से देखेंगे तो रस्सी दिखाई नहीं देता, तो फिर भी हमें हम जानते हैं क्योंकि वो एक नेकलेस में के रूप में प्रस्तुत है, तो उसके कारण मणि वो रस्सी के बिना वो एक साथ जुड़े नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए रस्सी है वहाँ पर, या धागा, रस्सी नहीं धागा है. सो वहाँ पर धागा है, हालांकि हम लोग भगवान को नहीं दे सकते हैं, फिर भी सब कुछ उनके ऊपर ही आधारित है. तो ऐसे भगवान बोलते हैं ये अनसीन थ्रेड इन क्रिएशन, तो भगवान ऐसे एक धागा है जिनको देख नहीं सकते लेकिन फिर भी उनके ऊपर ही आधारित है. तो ये एक भगवद गीता में तर्क देते हैं भगवान. और तो आजकल वो चांस थ्योरी बहुत पॉपुलर है, सब कुछ अपने आप है, ऐसे मैं बता रहा था ना, वो चपाती भी अपने आप नहीं होता है. तो चांस सृष्टि को हम लोग लागू नहीं कर सकते हैं, आप जानते हैं चांस, कभी कभी वो हम लोग एक सिक्के को ऊपर फेंकते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, हेड एंड बाय चांस इट वाज हेड, लाइक ऐसे बोलते हैं ना, लेकिन वो चांस के द्वारा ऐसे होता है, जिसको जो फिजिक्स जानते हैं वो लोगों को पता है, वो हेड और टेल इसलिए होता है क्योंकि जितना हम शक्ति उसको फोर्स लगाते हैं और जो सिक्के का जो वेट है और जो हवा का जो फ्रिक्शन रहता है और ग्रेविटी रहता है, ये सब मिलाकर वो हेड और टेल होता है, ऐसा नहीं बाय चांस होता है. तो ये चांस क्या है, ये चांस का अर्थ क्या है, चांस एक सिर्फ बार बार कोई प्रक्रिया होता है उसके जो नतीजा है उसको हम लोग अपने शब्दों में चांस करके उसको हम लोग समझाते हैं, वास्तव में उसको हम लोग सृष्टि को लागू नहीं कर सकते. क्यों? सृष्टि बार बार ऐसे नहीं होता है. सो बाय चांस एक विस्फोट हो गया, वो बिग बैंग थ्योरी है ना, बाय चांस एक विस्फोट हो गया फिर उसके कारण सृष्टि हो गया, लेकिन हम लोग चांस उसी को लागू कर सकते हैं जो प्रक्रिया बार बार होता है. ऐसा हमारे जीवन में ऐसे अनुभव नहीं है कि सृष्टि बार बार हो रहा है, तो इसलिए उसको हम लागू नहीं कर सकते. ये समझ में आ रहा है? तो चांस इज अ इग्नोरेंस ऑफ फिजिकल लॉज, इट इज अगेनस्ट लॉज ऑफ नेचर. तो ऐसा कुछ चांस नहीं है प्रकृति में, हम लोग ऐसे कुछ देते नहीं हैं, सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, तो वो हमें समझना चाहिए. एंड और क्या है, ये समझ में आ गया है? हेड और टेल चांस नहीं है, उसको समझना चाहिए, वो उसके लिए भी कारण है, क्यों हेड और टेल आता है उसके लिए भी, उसके पीछे बहुत सारा फिजिक्स है वहां पर. वो जानना चाहिए हम लोग, तो इसलिए सृष्टि को और चांस लागू नहीं कर सकते हैं। इन अंग्रेजी में उसको चांस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट ऑफ ए रिपीटेड फेनोमेना, समझ में आ गए, बार बार जो प्रक्रिया होता है उसके नतीजे को हम लोग ऐसे व्यक्त करते हैं बाय चांस। अभी 100 बार हम लोगों ने ये क्वाइन फेंका है ऊपर, तो 50 बार क्या हुआ, हेड हुआ, 50 बार वो टेल हुआ, और 101 बार जब हम फेंकते हैं बाय चांस इट मे बी हेड और टेल, ऐसे हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। तो चांस किसके लिए, वो रिजल्ट के लिए होता है, लेकिन सृष्टि के लिए, कॉज के लिए नहीं होता है। इट कैनॉट एक्सप्लेन द कॉज एक्चुअली, तो इसलिए, और सृष्टि बार बार नहीं होता है, और सृष्टि के जो उद्गम है उसको हम लोग उसको लागू नहीं कर सकते हैं, तो वो समझना चाहिए उसको। तो ये बहुत ही प्रचलित है वैज्ञानिकों को में, वो लोग ऐसे चांस चांस बोलते रहते हैं हमेशा, लेकिन वो अज्ञान है बस। तो सबके पीछे कारण है, इसलिए भगवान है वो कारण, सर्व कारण कारणम। और इस एक और बहुत ही पावरफुल तर्क क्या है, शक्तिशाली तर्क क्या है, इस जगत में लोग किसी न किसी का पूजा करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, कोई नहीं है तो आजकल ना बहुत सारे क्रिकेट स्टार या कोई सिनेमा स्टार का मंदिर बना के उनको तो पूजा करना चाहते हैं लोग, सचिन तेंदुलकर को गॉड बनाना चाहते थे, वो बोल रहा था मैं गॉड इसलिए नहीं क्योंकि मुझे 100 सेंचुरी मारने के लिए लंबा समय लगा, वो जल्दी किया होता तो भगवान बन जाता था, नहीं ना ये भगवता है ये नहीं, इट्स नॉट, लेकिन फिर भी लोगों में ये प्रवृत्ति है कि किसी न किसी को वो क्या करना चाहते है, सेवा करना चाहते है, आराधना करना चाहते है, पूजा करना चाहते है, कोई नहीं है तो एक कुत्ते को रख के पूजा करते है, वो प्रवृत्ति है, जीव में प्रवृत्ति है। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, हमारे अंदर वो प्रवृत्ति है इसलिए भगवान होना ही चाहिए। कैसे इसको समझेंगे, हम हमें भूख लगता है फिर अन्न है इस प्रकृति में, हमें प्यास लगती है तो पानी है, तो इसलिए भगवान को हम किसी ना किसी को हम लोग सेवा करना चाहते हैं इसलिए भगवान होना ही चाहिए, समझ आ रहा है। तो ये बहुत ही शक्तिशाली तर्क है ना। तो बच्चों को माता पिता का जरूरत है इसलिए माता पिता है, तो वैसे ही भगवान है, तो इसको नेसेसिटी एंड फुलफिलमेंट, लॉ ऑफ नेसेसिटी एंड फुलफिलमेंट कहते हैं, वो एक नेसेसिटी है। और दैट इज डिजाइनर, एग्जाम्पल फॉर डिजाइनर, डिजाइन इंप्लाइज डिजाइनर। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, आप एक फूल का चित्र बनाइए और एक वो स्वाभाविक जो प्रकृति में जो उगा हुआ जो फूल है दोनों को तुलना कीजिए, कौन सा अच्छा लगता है बताइए, जो प्रकृति से आया है वो अच्छा लगता है ना, वो बहुत सुंदर लगता है, हालांकि इस व्यक्ति ने जो चित्र बनाया है वो भी बहुत सारा बुद्धि लगाता है, अपना जो भी कला है उसमें लगाता है, उसके लिए बुद्धि चाहिए और कला चाहिए, लेकिन जो प्रकृति में आता है उसके लिए कला और बुद्धि नहीं चाहिए, वो अपने आप आ गया बोलते हैं, है ना उसके लिए भगवान नहीं चाहिए, उसके लिए वो एक बुद्धिमान व्यक्ति नहीं चाहिए, तो ये मूर्खता है, तो ऐसे कहते हैं। तो ये सब हमें जानना चाहिए भगवान के अस्तित्व को समझाने के लिए, तो कम से कम। और दूसरा चीज है, हम सब लोग सुख प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहे, तो और इतिहास में हम लोग देखते हैं पाश्चात्य देश के इतिहास में या पूर्व देशों के इतिहास में ऐसे कई सारे लोगों ने तो भगवान को साक्षात्कार करने के लिए अपने घर परिवार या जगह बहुत कुछ त्याग करके गए हैं, है ना। तो इसका अर्थ है कि हम सब लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, हम सब लोग असली आनंद को ढूंढ रहे हैं। तो हमें पता नहीं है कि कहाँ पर आनंद है, वास्तव में आनंद भगवान में है यार। तो इसलिए प्रभुपाद क्या करते थे, सब लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को पता नहीं है, वास्तव में सभी लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आनंद असली में भगवान में ही है यार, सुख उनके पास ही है। तो ये सब यू नो तर्क दे सकते हैं। ओके
भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्याय में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में परमेश्वर के सभी गुणों से युक्त होते हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर थे हैं। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं और इस समय हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करना चाहते हैं, और हमें नियंत्रण रखने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह कृष्ण में भी है। यद्यपि हमें प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं है, इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है।
यहाँ पर यह पूरा पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या बोल रहे कि जीव और भगवान और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में बता रहे। तो पहले जीव और भगवान के बीच में क्या संबंध है, वो कैसे एक ही साथ में अचिंत्य, इसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। तो जीव और भगवान एक ही साथ में एक भी है और भिन्न भी है। सो गुणात्मक दृष्टिकोण से एक है, क्योंकि भगवान ईश्वर है, हम लोग भी ईश्वर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण यहाँ पर श्री प्रभुपाद देते हैं, जैसे सोने के
सोने के कण भी सोना है।
तो दो उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं, एक सोना और सोने के कण, समुंदर और समुंदर के एक बूंद। तो सोने के कण भी सोने के समान है वो, तो गुणात्मक दृष्टि से। लेकिन सोना और सोने के कण में वो मात्रा के दृष्टिकोण से अंतर है, वैसे ही एक बूंद पानी कहाँ और समुंदर कहाँ, लेकिन वो हम लोग देखेंगे वो भी एक बहुत यू नो वो सॉल्ट, उसमें भी सॉल्ट रहता है। आप केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, सो रासायनिक दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो वो दोनों एक समान होते हैं, लेकिन तो मात्रा के दृष्टिकोण से बहुत अंतर होता है। ये जीव और भगवान के बीच में अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको सिखाया, एक ही समान एक ही साथ में जीव भगवान के साथ एक भी है और भिन्न भी है। तो और प्रभुपाद यहाँ पर उदाहरण देते हैं, कैसे हम लोग भी नियंता बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्यों हम नियंत्रण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं प्रकृति के ऊपर। विशेष करके आधुनिक वैज्ञानिक लोग कहा करते थे हम बहुत ही शीघ्र प्रकृति के ऊपर जीत हासिल करेंगे करके। तो उस संघर्ष में कौन विजयी हुआ बताइए, प्रकृति ने विजयी हाँ उस संघर्ष में। तो फिर भी वो प्रवृत्ति है जीवन में नियंत्रण करने का, क्यों, वो भगवान में है, भगवान के अंश होने के कारण जीव में भी ये विद्यमान रहता है। लेकिन तो कुछ हद तक, हद कुछ हद तक के लिए जीव यशस्वी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत भगवान बड़े बड़े ऐसे ग्रहों को आकाश में ठहराते हैं उसको, हम लोग थोड़ा छोटा छोटा एक सैटेलाइट, एक स्पुतनिक ऐसे कुछ हम लोग आकाश में फेंक सकते हैं। अंतर है ना, है कि नहीं? तो प्रवृत्ति है दोनों में, क्योंकि भगवान में है, लेकिन तो उस दृष्टिकोण से भगवान से एक है, लेकिन भगवान ऐसे जितना बड़े पैमाने पर कार्य करते हैं उतना जीव नहीं कर सकता है। तो ये अंतर है, तो इसको अचिंत्य भेदा भेदा तत्व कहते हैं। तो सब कुछ हम लोगों को अचिंत्य भेदा भेद तत्व के अनुसार ही समझना चाहिए। भगवान और जीव के बीच में संबंध, भगवान और प्रकृति के बीच में संबंध, प्रकृति और जीव के बीच में संबंध। तो प्रकृति और जीव के बीच में संबंध कैसे होता है, अभी प्रभुपाद आगे वर्णन करेंगे। दोनों प्रकृति है, जीव परा प्रकृति है, लेकिन प्रकृति ये भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति है। तो क्योंकि जीव भौतिक प्रकृति जड़ है और जीव चेतन है, तो ये अंतर है। एक ही समय पर दोनों में एकता भी है और भिन्नता भी है। तो ऐसे ही सब कुछ गुरु और कृष्ण के बीच में क्या है अंतर है, क्योंकि वो गुरु के प्रिय भक्त होते हैं, इसलिए उनको गुरु भगवान के समान ही आदर दिया जाता है। तो लेकिन फिर भी वो भगवान का सेवक है, वो भगवान से एक नहीं हो जाता है। तो ऐसे अचिंत्य भेदा भेद, भगवान और शिव के बीच में एकता और भिन्नता, तो जैसे दूध और दही के समान, भगवान और उनके धाम के बीच में, वो धाम भी भगवान के जैसे ही आध्यात्मिक है वो भी, तो भगवान भी पूर्ण आध्यात्मिक है, तो धाम भी ऐसे है, लेकिन फिर भी धाम क्या है, भगवान को सेवा करती है, उनका पैराफर्नलिया है वो। तो ऐसे सब कुछ अचिंत्य भेदा भेद तत्व के द्वारा भगवान और उनके विस्तार और अवतार जो होते हैं वो भगवान से अभिन्न अभिन्न है, वो भगवान ही है, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान कौन है, वो आदि भगवान है, मूल भगवान है। तो ऐसे अचिंत्य भेदा भेद तत्व से सब कुछ हमें समझना चाहिए। यहाँ पर जीव और भगवान के बीच में अचिंत्य भेदा भेद तत्व को श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं।
भौतिक प्रकृति क्या है, गीता में इसकी भी व्याख्या अपर प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति स्त्री स्वरूप है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होती है जिस प्रकार पत्नी अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है, क्योंकि भगवान ही अध्यक्ष है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाते हैं। इसका उल्लेख भगवद्गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अपरेण इतस्त्वम्यां, यह भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है। प्रकृति विद्धि मे परा, जीव भूतान महाबाहो ययेदं धारयते जगत्। लेकिन इससे भी परे दूसरी प्रकृति है, जीव भूतान अर्थात जीव है। प्रकृति तीन गुणों से नियंत्रित है, सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप कर्मों के फलस्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरणार्थ मान ले कि मैं व्यापारी हूं और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है, तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूं। किंतु यदि मान लेते कि व्यापार में मेरा सब धन जाता रहा तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूं। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं, यह कर्म कहलाता है।
तो तो प्रकृति भगवान और जीव के बीच में फिर से प्रॉपर विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। तो वो दो शब्द आते हैं, प्रकृति और पुरुष। पुरुष मतलब जो नियंत्रण करने वाले होते हैं या भोक्ता है, वो भगवान है। इस जगत में जीव हालांकि प्रकृति है लेकिन वो पुरुष बनने के लिए कोशिश करते हैं। हिंदी में क्या है, पुरुष और स्त्री इस जगत में ऐसा है, लेकिन जो पुरुष ये जीवात्माएं जो पुरुष शरीर में हो या स्त्री के शरीर में, दोनों पुरुष बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सबको इंद्र तृप्ति करने का इच्छा है। लेकिन वास्तव में भगवान पुरुष है, सभी जीव वो उनसे नियंत्रित है और उनसे भोग्य है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सबकी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थाई हो सकती है परंतु यह मिथ्या नहीं है। कोई कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवद गीता या वैष्णव के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थाई माना जाता है। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त होती है और बादल चले जाते हैं तो ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी समय में किसी स्थान पर होती है, कुछ काल तक रहती ठहरती है और फिर मुक्त हो जाती है। प्रकृति वो है ना, शंकराचार्य के अनुयायी मायावादी वो लोग बोलते हैं जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो बोलते हैं ये जगत भी मिथ्या है, बोलते हैं उसका विद्यमान नहीं रहता है। तो वास्तव में जगत मिथ्या नहीं है, वो अस्तित्व है उसके लिए। और प्रकृति भी शाश्वत है, हालांकि प्रकृति के जो रूप है उसका प्राकट्य रूप है वो शाश्वत नहीं है। जो भगवद्गीता में बोलते हैं ना, दुःखालयम अशाश्वतम, ये भौतिक जगत दुःखालय है और अशाश्वत है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये नहीं है कि भौतिक प्रकृति ही शाश्वत नहीं है, उसके जो रूप जो है वो बदलते रहते हैं। जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अलग अलग ऋतुएं बदलते हैं, तो फिर पहले बारिश का मौसम आता है, सब कुछ हरा भरा हो जाता है, फिर उसके बाद में सब पीले पड़ जाते हैं। जब दुख का मौसम आ जाता है तो ऐसे प्रकृति के रूप बदलते जा रहे हैं, लेकिन प्रकृति हमेशा रहती है, तो वो हमें समझना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि क्योंकि वो भगवान का शक्ति है, वो भी सत्य है, लेकिन एक क्षणिक सत्य है ये, तो ये बदलता रहता है। और वैसे ही हम लोग सृष्टि को देखेंगे, प्रकृति का ये भौतिक जगत का सृष्टि होता है, पालन होता है, फिर विनाश होता है, फिर से और सृष्टि होता है, ऐसे हमेशा चलता रहता है। इसके कारण इसको शाश्वत माना गया है, भौतिक प्रकृति को शाश्वत, हालांकि उसके रूप सृष्टि पालन और विनाश के रूप में बदलते रहते हैं। तो वेयर इट इज,
इसलिए प्रकृति प्रकृति इस रूप में कार्यशील है।
प्रकृति इस रूप में कार्यशील है लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसीलिए प्रकृति शाश्वत है, मिथ्या नहीं। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्ना शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है,
किंतु वे विलग नहीं अपितु भगवान से नित्य संबद्ध है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबद्ध है और सभी शाश्वत है, लेकिन कर्म शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के फल अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अत्यंत शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं, और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विभिन्न प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवद गीता में इसका भी वर्णन हुआ है।
तो पांच विषयों में से चार जो है वो शाश्वत है, कर्म वो शाश्वत नहीं है। तो अन्य धर्मों में ऐसे कुछ, ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म में ऐसे कुछ वो लोग बोलते हैं कि वो स्वर्ग नहीं जाएंगे, जीव नरक जाते हैं, तो नरक जाने के बाद हमेशा के लिए नरक में ही रहते हैं, उसको एटर्नल डैमनेशन बोलते हैं अंग्रेजी में उसको। सो एटर्नल डैमनेशन मतलब शाश्वत रूप से वो नरक में ही रहते हैं, क्योंकि उनको ये कर्म के बारे में पता नहीं है। तो इसलिए कर्म शाश्वत नहीं है, कर्म को भुगतने के बाद तो हम लोग उससे मुक्त हो जाते हैं, पता नहीं है उनको, है ना। तो वो उनको कर्म के सिद्धांत के बारे में कुछ भी पता नहीं। श्रील प्रभुपाद जब वो युवा अवस्था में थे, वो कलकत्ता में वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज जाते थे ना, तो वहाँ पर उनको बाइबल सिखाने के लिए वो ईसाई धर्म मत वाले आते थे, क्योंकि वो उनका कॉलेज था वो। तो वो कभी कभी ये हिंदुओं का धारणा जो है कर्म का सिद्धांत, उसको वो लोग क्या करते थे, निंदा करते थे। हमने ये जो कर्म किया है या नहीं उसका क्या साक्षी है, वो इज द विटनेस। ऐसे कोई विटनेस होना चाहिए ना, है कि नहीं। आप कोर्ट में कोई कुछ करेंगे तो उसको सिद्ध करने के लिए विटनेस चाहिए होता है। तो ऐसे ही कुछ हमने कर्म किया है उसका क्या साक्षी है, ऐसे वो पूछ के उसको खंडन करते थे। श्रील प्रभुपाद कहते थे तब हमने तो भगवद गीता पढ़ा नहीं था, जब भगवद गीता पढ़ लिया तो समझ में आ गया यहाँ पर साक्षी है। भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में है, तो आत्मा के साथ साथ परमात्मा भी है, वो देखते रहते हैं। भगवद गीता में इसके वर्णन होता है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषपर। 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में ऐसे भगवान कहते हैं, उपद्रष्टा मैं दृष्टा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं साक्षी हूँ सबको, जो कोई भी कुछ कर रहा है उसको मैं देख रहा हूँ ऐसे। तो ऐसे उपनिषदों में भी वर्णन आता है कि कैसे दो पक्षी है एक ही पेड़ के टहनी पर, एक और वृक्ष के अच्छे और जो स्वीट एंड बिटर कड़वे जो फल को वो खा रहा है, दूसरा उसको देख रहे हैं। वो दूसरा पक्षी क्या है, वो भगवान है, वो परमात्मा। ये जो अच्छा और यू नो स्वीट एंड बिटर मीन्स हमारे अच्छे और बुरे कर्म के जो फल है, हम लोग उसको अनुभवत रहते हैं, उसको आस्वादन करते रहते हैं हम लोग। तो ऐसे ये कर्म के नियम है। तो भगवान तो देखते ही रहते हैं, अन्य भी बहुत सारे कैसे साक्षी है, विटनेस है। तो भागवत में 13 जो साक्षी का वर्णन आता है, दिन रात चंद्रमा सूरज अग्नि, तो ये सब देखते रहते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो कोई भी इस जगत में कुछ हम लोग क्रिमिनल एक्टिविटी करेंगे, ऐसे कुछ कुछ यू नो व्हाट इज दैट व्हाट दे से ब्राइब, रिश्वत देकर किसी न किसी तरह से हम लोग निकल सकते हैं, लेकिन भगवान के दरबार में ऐसे नहीं होता है ना। वो बोलते हैं ना हिंदी में, भगवान के दरबार में देर है लेकिन अंधेर नहीं करके ना। तो सब लोगों को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा ही। वैसे दे ऑल्सो हैव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरेशन, दे ऑल्सो बिलीव इन लिबरेशन, बट दैट इज ग्रेजुअल एवोल्यूशन। फर्स्ट यू हैव टू डू कर्म, गो टू हायर प्लैनेट्स, ऐसे उन चलो वील डिस्कस दैट। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर, परम चेतना स्वरूप, ईश्वर अर्थात परम ईश्वर परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर का अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है, इसीलिए जीव प्रकृति परा या उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है। लेकिन भगवान की चेतना परम है, और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी, यहां तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता, और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। यह चेतन तो है लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं। जीव तथा ईश्वर का अंतर भगवद्गीता के 13वें अध्याय में बताया गया है। ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या अनंता के रूप में वास कर रहे हैं, और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। यहाँ पर भगवान जी पहले थोड़ा बताते हैं कि भौतिक प्रकृति और जीव के बीच में अंतर है कि भौतिक प्रकृति जड़ है और जीव चेतन युक्त है, लेकिन भगवान भी चेतन युक्त है। वो है ना श्लोक, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। तो जीव को बहुवचन में कहा गया है क्योंकि बहुत सारे जीव है लेकिन भगवान एक ही है, तो इसलिए अंतर है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, तो एको बहुनाम, वो एक नित्य और एक चेतन युक्त व्यक्ति जो है वो अन्य नित्यों को या चेतन युक्त व्यक्तियों को पालन करते हैं, वो तो वो अंतर है। और भगवद्गीता के यहाँ पर 13वें अध्याय में बताया गया है कि ईश्वर क्षेत्रज्ञ या चेतन है, जैसे कि जीव भी है। तो वहां पर अर्जुन ने प्रश्न पूछा था भगवान को, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बारे में बताइए। क्षेत्र मतलब ये शरीर, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद्य व्यतीतम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। तो भगवान कहते हैं कि ये शरीर क्षेत्र है, क्योंकि हम लोग सभी कार्यकलाप ये शरीर के द्वारा हम लोग करते हैं, इंद्रियों के द्वारा, जो शरीर में इंद्रियां हैं इसलिए उसको क्षेत्र कहते हैं। आत्मा के लिए कार्य क्षेत्र है ये, और इदम शरीर क्षेत्र के ये तद यो व्यतीतम प्राहु, इसको जो जानने वाले हैं उनको क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जानने का अर्थ क्या है, हमारा जो चेतना है पूरा शरीर में फैल गया है, आत्मा का चेतना शरीर में फैल गया है। वास्तव में शरीर में आत्मा चेतन नहीं है, लेकिन आत्मा के कारण शरीर में चेतन आ जाता है। तो हम लोग तो ऐसे कुछ हम लोग कौन अनुभव कर रहे हैं शरीर में, वो आत्मा ही है, क्योंकि वो चेतन युक्त है, शरीर जड़ है, इसके कारण अनुभव करने वाला आत्मा है, इसलिए वो क्षेत्रज्ञ बन जाते हैं, वो ज्ञाता क्षेत्र को जानने वाला हो जाता है, तो इसलिए उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। फिर भगवान आगे बताते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो ज्ञानम यत्र ज्ञानम मतम मम। तो हे अर्जुन, ये भी समझ लो कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, लेकिन अंतर बताते हैं, मैं सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं सभी क्षेत्रों में विद्यमान हूं। तो ये जीवात्मा और परमात्मा के बीच में अंतर है। तो परमात्मा क्या है? सुपर कॉन्शियस, जीवात्मा इंडिविजुअल कॉन्शियस। हम लोग सिर्फ हमारे शरीर में क्या हो रहा है उसका अनुभव कर सकते हैं, दूसरों के शरीर में क्या हो रहा है वो अनुभव नहीं कर सकते। कभी कभी कोई रोग से पीड़ित है, बहुत सारा उसको तकलीफ हो रहा है, वो कुछ हम लोगों को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक अनुभव तो वही व्यक्ति कर रहा है उसको, है ना, हम लोग उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन भगवान है वो सबको जानते हैं, इसलिए सर्व क्षेत्रेषु भारत। प्रभुपाद कहा करते थे, मुझे मेरे अंदर क्या हो रहा है वो मुझे पता है, इनके अंदर क्या हो रहा है उनको पता है, और इनके अंदर क्या हो रहा है उनको पता है, लेकिन मुझे इनको अंदर क्या हो रहा है वो पता नहीं है, इनको ये इनके अंदर था, लेकिन एक व्यक्ति है वो सबको जानते हैं। कभी कभी लोग ऐसे शोक करते हैं ना, मेरा बात कोई सुनता ही नहीं है करके, है ना, लेकिन एक व्यक्ति है वो सबका बात सुनते हैं, वो भगवान है, लेकिन हम उनको बारे में पता नहीं हमें, तो बौद्धिक जगत में हमें उनको ज्ञान नहीं है उनके बारे में, इसलिए उनको कभी कभी भागवत में भी ऐसे वर्णन आता है अविज्ञात सखा, ऐसे वो मित्र है भगवान जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो ऐसे तो यहाँ पर क्या कहता बता रहे कि अंतर बता रहे भगवान परमात्मा में और जीवात्मा में क्या अंतर होता है, तो वो कैसे सब कुछ उनका चेतना सब जगह व्याप्त रहता है। तो एक बार जब हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, हम बता रहे थे कि शरीर में ये सभी कार्यकलाप इसलिए चल रहे कि आत्मा है वहां पर, तो आत्मा नहीं है तो ये क्रियाशीलता नहीं रहता है, शरीर स्तब्ध हो जाता है, तो उसको ही मृत्यु कहते हैं लोग। तो एक उनके हमारे एक मित्र ने उनको हमें प्रश्न पूछा, फिर वो एटम अणु है ना, अणु में क्या होता है, एटम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऐसे तीन चीज होते हैं, वो व्हाट इज द सेंटर ऑफ दैट एटम, व्हाट इज न्यूक्लियस मतलब वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो घूमते रहते हैं, सो उसमें भी आत्मा रहता है, ऐसे उन्होंने प्रश्न पूछा, क्योंकि वहां पर वो घूम रहे हैं ना, उस क्रियाशीलता है वहां पर, है ना, कुछ कार्य चल रहा है वहां पर। वैसे तो आत्मा सब जगह है, इस हॉल में भी बहुत सारे आत्माएं हैं, है ना, इसलिए भगवान बोलते हैं उसको सर्वगत सब जगह विद्यमान रहते हैं जीवात्माएं है। लेकिन जीवात्मे हो या ना हो, लेकिन परमात्मा का चेतना तो सब जगह रहता है ना, उसके कारण सब जगह प्रकृति में क्रियाशीलता रहता है, वो परमात्मा के चेतना के कारण। भगवान अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है कि वो ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और हर एक अणु में भी वो प्रवेश करते हैं, परमाणु चयांतरस्थ, ऐसे ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं ब्रह्म संहिता में। तो अणोरणीयाम महतो मयीयाम, भगवान को ऐसे भी वर्णन किया गया, वो सबसे बड़े से बड़े है और सबसे छोटे से छोटे भी है वो, अनु और अनियन, तो इसलिए कहीं जगह कहाँ भी वो प्रवेश कर सकते हैं। तो ये भगवान है, उनकी चेतना सब जगह विद्यमान है, इसलिए प्रकृति में हम लोग क्रियाशीलता देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले हैं, अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर अभियंता के रूप में वास कर रहे हैं।
तो कहां पर बताया गया है? ईश्वर सर्वभूतानां
हृदयेषु
अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयं सर्वभूताणि यन्त्रारूढानि माया। 18वें अध्याय के 61वां श्लोक।
और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक निधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म के पाप पुण्य में फंस जाता है। वह एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर ग्रहण करता है, जिस प्रकार हम वस्त्र उतारने तथा पहनते रहते हैं। चूंकि इस प्रकार आत्मा देहांतरण कर जाता है, अतः उसे अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सत्वगुण में स्थित हो और वह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फल स्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है, इसलिए हमने यह कहा है कि पांच तत्व ईश्वर जीव प्रकृति काल तथा कर्म में से चार शाश्वत हैं, कर्म शाश्वत नहीं है। तो यहां पर प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि भगवान ये हम लोग शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में बदल रहे हैं। इसके अलावा प्रभुपाद यहां पर तर्क दे रहे हैं कि कैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, जब कपड़े वो बुरे हो मतलब वो पुराने हो जाते हैं तो उसको त्याग देते हैं, दूसरा कपड़ा ले लेते हैं हम लोग। ऐसे ही जीवात्मा ये कपड़ा शरीर को बदलता रहता है। तो इसके लिए क्या तर्क है, कैसे इसको सिद्ध करेंगे? आजकल वो भी वो मानते नहीं है ना, पुनर्जन्म है करके, कैसे सिद्ध करेंगे उसको? लेकिन उसको अभी बहुत वो वैज्ञानिक लोग ही खंडन करते हैं उसको, उसमें बहुत सारे गलतियां हैं करके। वो मन कुछ मन अलग अलग चित्रों को वो आप कैसे बता सकते हैं? क्योंकि मन का एक वो उसके अंदर उतना शक्ति है कि अलग अलग चित्रों को वो मिश्रित करता है। प्रभुपाद बताते हैं आपने सोना देखा है और पर्वत देखा है, वो दोनों को मिला के वो सोने का पर्वत बना देता है मन, है ना। तो ऐसे चित्र को वो मिश्रित करके वो कुछ वो बना सकता है, उसके अंदर उतना शक्ति। तो मन को इसलिए बुद्धि को मन को वो बहुत खतरनाक है वो मन, है ना। तो ऐसे भी कर सकता है, सही है आपका कि पिछले जन्म का भी कुछ चीज ऐसे स्वप्न में आते हैं वो ठीक है, लेकिन हाँ ऐसे भी हो सकता है ना। पुनर्जन्म के लिए क्या तर्क है? कैसे वो सिद्ध होता है कि
अगला जीवन है या पिछला जीवन है करके।
इसी जीवन में आप कई शरीर
तो पुनर्जन्म तो अभी ही हो रहा है। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र। देहांतर शरीर को बदलना वो हो रहा है ना अभी भी, छोटे बच्चे का शरीर था, अभी युवा अवस्था का शरीर, फिर बुढ़ापा से बुढ़ापा में बदल जाता है। देहांतर तो अभी, लेकिन व्यक्ति वही है, ये लॉजिक है ना, ये तर्क है ना, देख रहे हैं हम लोग, इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है। शरीर तो बदल रहा है लेकिन व्यक्ति वही है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग वही व्यक्ति है जब छोटे, आप जानते हैं लोग अभी स्वीट, दे कैच स्वीट मेमोरीज, आपके जब बचपन में जो चित्र है आपने जो निकाला था वो देखिए, शरीर पूरी तरह से अलग है। तो ऐसे शरीर बदलता रहता है लेकिन व्यक्ति वही है, भगवान ऐसे तर्क देते हैं। और एक और तर्क है कि क्यों एक बच्चा अमीर परिवार में जन्म लेता है, दूसरा बच्चा गरीब परिवार में जन्म लेता है, उसके लिए क्या तर्क है, वो बच्चा क्या किया था। आजकल बहुत सारे लोग भारत में जो जन्म लेते हैं वो सोचते हैं मैं क्यों भारत में जन्म लिया, क्यों अमेरिका में जन्म नहीं लिया, ऐसा सोचते वो सोचते हैं कि अमेरिका में बहुत सारा कुछ है ऐसा लोग सोचते हैं। क्यों, इसके लिए क्या कारण है, इसके लिए पूर्व जन्म किए हुए कर्म है। ये कर्म के नियम के लिए भी ये भी यही तर्क है और पुनर्जन्म के लिए भी यही तर्क है। ये जीवन पूर्व जन्म के बाद आया तो इसके बाद और एक और जन्म भी आएगा ऐसे, क्योंकि इस जन्म में जो कर्म करते हैं उसके लिए हमें, तो अगले जीवन में भी हमें उसको उसके अनुसार अलग जन्म मिलेगा। तो ये और यहाँ पर श्री प्रभुपाद ये देहांतर जो हो रहा है उसमें परमात्मा का क्या कार्य है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। क्या करते हैं वो जीव, कुछ कर्म करता है फिर भूल जाता है, तो क्या किया था उसने, क्योंकि जीव का क्यों बोलता है जीव, उसका स्मृति सीमित है बस, वो एक कारण है। दूसरा कारण है जब हम मृत्यु या जन्म होता है तो उसका जो अनुभव इतना तीव्र रहता है कि हमारे जो मन के ऊपर जो छाप रहते हैं उसको वो मिटा देते हैं। तो इसके दो कारणों के कारण हम लोग भूल जाते हैं, तो शरीर बदलता है इसके कारण हम लोग भूल जाते हैं। तो भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं, वो उनको पता रहता है कि हम लोगों ने क्या क्या कर्म किया था, हमारे क्या क्या इच्छाएं थे पूर्व जन्म में, तो फिर से उनको याद दिलाते हैं हम लोग। इसलिए सर्वस्य चाहम हृदिसन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोनम च वेदेश सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदे। मैं सबके हृदय में विद्यमान हूँ और मुझसे ज्ञान विस्मृति और स्मृति आता है, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो वही ये ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जो जाना हमारा ट्रैवल है उसको नियंत्रण करते हैं भगवान। तो या तो इन चारों में से कर्म क्या है, शाश्वत नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है, भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य है, यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवद्गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। ये चेतना क्या है, वो लोग उसको बोलते हैं कि पदार्थ के संयोग से, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो लोग बोलते हैं ऐसे। तो लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक भी वो मानते नहीं है उसको, अभी तक वो लोगों ने ये सिद्ध नहीं कर पाया है, ऐसे बोलते रहते हैं वो लोग। अभी आप ये सभी है पदार्थों से चेतना आता है, तो ऐसे कुछ पदार्थ डाल दीजिए यू नो मृत शरीर में और उसको उसको आप फिर से जीवित कीजिए,
मृत शरीर में चेतना नहीं रहते है ना, आप पोस्टमार्टम करते हैं ना, तो वो उसको अनुभव नहीं होता है उस व्यक्ति को, क्योंकि चेतना नहीं है। वही अंतर है मृत व्यक्ति में और जीवित व्यक्ति में। जीवित व्यक्ति में चेतना रहते है। तो चेतना का स्त्रोत्र क्या है? तो पदार्थ चेतना का स्त्रोत्र नहीं है। तो चेतना का स्त्रोत्र है वो जीवात्मा, आत्मा है। आत्मा से चेतना, आत्मा का शक्ति है, वो सब जगह फैलती है। तो अविनाशी तु तद विद्धि ये न सर्वम इदम ततम, तो ये न सर्वम इदम ततम, पूरा शरीर में वो फैलती है आत्मा का जो शक्ति है उसको चेतना बोलते हैं। तो 13वें अध्याय में भी भगवान वर्णन करते हैं, जैसे सूरज तो एक जगह स्थित होकर पूरा सबको, ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, वैसे ही ये आत्मा है वो हृदय के भाग में रहकर पूरा शरीर को अपने चेतना फैला देते हैं। तो ऐसे भगवान वर्णन करते हैं। तो ये चेतना है। तो उसके लिए भी बहुत सारे तर्क दे सकते हैं हम लोग, कैसे पदार्थों से चेतना नहीं आती। तो ये एक है कि आप पर कुछ पदार्थ डाल के फिर से उसको चेतनशील बनाइए, मृत शरीर को, वो नहीं कर सकते हैं। और हम लोग देहांतर के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, तो चेतना क्या है? एक सामान्य भाषा में हम लोग समझेंगे तो चेतना वो अवेयरनेस, जो महसूस करने की जो शक्ति है उसको चेतना कहते हैं हम लोग। सो चेतना मीन्स कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस। और हम लोग अस्तित्व में है, जो अस्तित्व की जो भावना है उसको चेतना कहते हैं। द सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, सेंस ऑफ आईनेस, अहम अहम, बाद में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन करने वाले कि जो अहम उसको चेतना कहते हैं। वो जो महसूस होता है कि आईनेस, द सेंस ऑफ आईनेस, तो उसको चेतना कहते हैं। तो शरीर बदल रहा है लेकिन जो आई है वो नहीं बदल रहा है। बॉडी चेंजेस बट आई रिमेन सेम, हम लोग भगवान बोलते हैं ना। तो कौमार यौवनम जरा तथा देहांतर, ऐसे कौमार अवस्था से यौवन अवस्था ऐसे बदल रहा है। तो आधुनिक औषधीय विज्ञान में भी वो लोग कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान में भी वो कहते हैं कि हर 7 दिन में एक जो सेल वे कोशिका जो मर जाती है, मर जाती है। तो 7 वर्ष में एक भी ऐसा हमारे अंदर कोशिका नहीं रहता है जो अभी है। तो सब बदल जाते हैं, शरीर बदलता जा रहा है लेकिन व्यक्ति वही है, जो चेतन युक्त व्यक्ति वही है। तो वो भी एक कारण है, वो भी एक तर्क है कि चेतन कैसे ये शरीर से भिन्न है। तो शरीर बदलता जा रहा है, शरीर क्या पदार्थों से बना है लेकिन वो अलग है, वो वही व्यक्ति है, वो बदल नहीं रहा है। तो वो भी, उससे भी हम लोग समझ सकते हैं। मतलब बेसिकली वो भगवद्गीता के 13वें श्लोक जो है, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमार यौवनम जरा, उससे हम लोग समझ सकते हैं कि चेतन युक्त जीव शरीर से अलग है और शरीर अस्थायी है, वो बदल रहा है लेकिन वो आत्मा शाश्वत है। ये जो चीज़ हम लोग उससे समझ सकते हैं। तो ये दूसरा तर्क है, प्रभुपाद और भी तर्क बताते थे तो वो चले गए, ऐसे बोलते हैं लोग, गता सुन नगद गता, तो गता मंस वो चले गए। कौन चले गए वो? तो शरीर तो वहीं पर है, कौन चले गए? ऐसे प्रभुपाद बोला करते थे। वो चेतना कहाँ गई? वो शरीर में जो भी पदार्थ चाहिए वो सब है, शरीर के अंग सब है, सब कुछ है, वहीं पर पड़ा है शरीर, लेकिन चेतना नहीं है। कहाँ गया वो चेतना? वो को चले गए मतलब कौन है वो? वो चेतन युक्त जीव है, वो चला गया वो शरीर को त्याग कर, उसको ही मृत्यु कहते हैं। और जब वो चेतन युक्त शरीर दूसरे शरीर में प्रवेश करके जन्म लेता है तो उसको जन्म कहते हैं। ये जन्म और मृत्यु है, जन्म और मृत्यु का परिभाषा है। तो ये एक तर्क है। प्रभुपाद और भी तर्क देते हैं कि हम लोग कहते हैं ना कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा टेबल है, ये मेरा सर है, ये मेरा मुख है और मेरा शरीर है। इसका अर्थ क्या है? ये सब चीज़ मेरे है, इसका अर्थ है मैं इससे अलग हूँ, है ना। तो इसलिए वो चेतन युक्त जीव अलग है, ये शरीर से भिन्न है, पदार्थों से अलग है। ये सब तर्क है कैसे ये चेतना पदार्थ से भिन्न है, वो ये भौतिक पदार्थों से परे है। वो चेतना भी वो भी एक तर्क है, क्योंकि चेतना के द्वारा एक व्यक्ति ये शरीर को महसूस करता है। तो हम लोग शरीर को महसूस कर रहे हैं तो वो चेतनशील, वो जो महसूस करने वाला है कौन है? वो अलग है शरीर को, वो महसूस कर रहा है, वो शरीर से भिन्न है वो, है ना। तो इसलिए चेतना ही उसके लिए तर्क है कि चेतना शरीर से भिन्न है करके, पदार्थ ये पदार्थों से बना हुआ शरीर से भिन्न है। और अन्य तर्क भी दे सकते हैं, यू नो पूर्व जन्म का कोई किसी किसी को स्मृति रहता है तो इसका अर्थ है कि शरीर का नाश होने के बाद वो चेतन युक्त जीव दूसरा शरीर में प्रवेश कर गया। वो कुछ लोग याद रखते हैं, कुछ लोग याद नहीं रखते। अच्छा है कि हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि याद रखते हैं तो बहुत सारे कठिनाइयां आ जाते हैं उसके लिए, पता है ना। पिछले जीवन में हम लोग छुए थे, कोई बिल्ली ने आके हमारे ऊपर, अभी इस जीवन में छुए बिल्ली को देखेंगे तो क्या होगा, इसलिए अच्छा है ना भूल जाना। तो इसलिए जो पुण्यवान होते हैं वो लोग भूल जाते हैं पूर्व जन्म को, तो अच्छा नहीं है वो, उसको स्मरण करना, स्मरण रखना। तो चेतना, भगवद गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं कि चेतना भौतिक संयोग की किसी परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। सो भगवद गीता डजंट एक्सेप्ट दिस दैट यू नो कॉन्शियसनेस कम्स बाय केमिकल कॉम्बिनेशन और एटॉमिक कॉम्बिनेशन, तो और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे बहुत सारे चीज है विज्ञान में जो गलत बच्चों को या लोग उसको विश्वविद्यालय में स्कूल में पढ़ते हैं, तो सब गलत चीज़ है ऐसी चीज़, और वो पढ़ते जाते हैं उसको पढ़ता, तो ये सब मूर्खता है।
यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है, जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति, जब वे इस भौतिक विश्व में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बनने के अधिकारी न होते जैसा कि भगवद्गीता में बोलते हैं। भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता, अतः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित दूषित नहीं है। भगवद्गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना चाहिए।
तो यहाँ पर फिर से भगवान प्रभुपाद भगवान पर वर्णन कर रहे हैं जीव और जीव की चेतना में भगवान की चेतना में क्या अंतर है। पहला हम लोगों ने देखा कि जीव का चेतना सीमित है और भगवान की चेतना असीमित है, सबको ये जानते हैं, ऐसे हम लोगों ने चर्चा किया। फिर उसके बाद में प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि जीव की चेतना कलुषित हो सकता है लेकिन भगवान की चेतना कभी कलुषित नहीं हो सकता। तो कैसे कलुषित हो जाता है? वो गुणों के, भौतिक जगत के जो गुण हैं सत्व रज तमो, उससे वो कलुषित होता है। इसलिए लोग अलग अलग कार्य में लगे रहते हैं, अलग अलग गुणों से युक्त है इस जगत में। तो ऐसे होता है। और भगवान के प्रवर यहाँ पर एक तर्क दे रहे हैं, भगवान का चेतना कभी भी कलुषित नहीं होता है क्योंकि वो भगवान प्रकृति के स्वामी है। और दूसरा तर्क प्रवर दे रहे हैं कि वो भी कलुषित होते हैं तो वो भगवद्गीता का ज्ञान कैसे प्रदान कर सकते थे, वो सुनने योग्य नहीं होता था भगवद्गीता। हमारे जैसे कोई व्यक्ति कुछ ग्रंथ लिखता है तो उसमें क्या रहता है, ऐसा चीज रहता है चेतना पदार्थों से आता है, ऐसे ऐसे कुछ गलत गलत चीज हम लोग लिख देते हैं, परिपूर्ण ध्यान नहीं आता है। तो वो हम लोगों को भगवान वो चेतना उनका शुद्ध रहता है, उनसे परिपूर्ण ज्ञान आता है, भगवद्गीता वो परिपूर्ण ज्ञान है। इसलिए तो भगवान जीवों से भी श्रेष्ठ है।
ओके, भगवद्गीता तो शिक्षा देती है।
शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे, परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अभी तो हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते, ये त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं, यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता। भगवद्गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है और अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्तव्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो स्वच्छंद रहना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवत में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवद्गीता के सारे उपदेश का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसलिए हम गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हमें चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हमें निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा शुद्ध जीवों में यही अंतर है।
तो हम लोग चर्चा कर रहे थे ना भगवद्गीता का क्या उद्देश्य है। ये जब चेतना गुणों के प्रभाव में आ जाता है तो हम लोग ऐसे देहात्म बुद्धि को हम लोग पहले बद्ध जीव बन जाते हैं। बद्ध जीव का अर्थ है वो देहात्म बुद्धि में रहते हैं। तो अर्जुन भी देहात्म बुद्धि में थे, वो तो उनको ऐसे अशुद्ध चेतना से देहात्म बुद्धि से मुक्त कराने के लिए भगवद्गीता का बोली गई थी। तो इसलिए वो भगवद्गीता का उद्देश्य है। तो मैं ये शरीर हूँ देहात्म बुद्धि का अर्थ है, मैं ये शरीर हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकी हूँ, तो भारतीय हूँ करके पाकिस्तान से लड़ना, पाकिस्तानी हूँ करके भारत से लड़ना, अगले जीवन में पाकिस्तान में जन्म लेना और भारत के तो ये देहात्म बुद्धि का लक्षण है। ये परिवार जगत ये सब कुछ जैसे अर्जुन भी बहुत ही प्रभावित हो गए थे, वो पारिवारिक लोगों को युद्ध भूमि में ले देकर, उनको पता नहीं था ये सब लोग असुर लोग हैं। हालांकि परिवार में है दुर्योधन वगैरह, लेकिन सब क्या है, असुर है। तो इसलिए उनको उससे देहात्म बुद्धि से मुक्त कराने के लिए तो ये भगवद्गीता कही गई थी। हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, भगवद्गीता का उद्देश्य है अज्ञान के जो अंधकार है उससे मुक्त कराना है। अज्ञान का अंधकार मतलब ये देहात्म बुद्धि। तो हमें ये आध्यात्मिक जीवन का पहला कदम है ये, कि जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसको ABCD कहते हैं आध्यात्मिक जीवन का। यह चेतना क्या है? यह है मैं हूं। तो फिर मैं हूं क्या है? कलुषित चेतना में मैं हूं का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं ही भोगता हूं। इस संसार चलायमान है क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी है तथा सृष्टा है। तो ये चेतना को कॉन्शियसनेस, बहुत सारे आधुनिक जो विज्ञान के बहुत सारे क्षेत्रों में भी इसको अध्ययन किया जाता है, क्वांटम फिजिक्स, इन द फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइकोलॉजी, तो ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर इस चेतना को अध्ययन कर रहे हैं। कितने सैकड़ों सालों से उसको संशोधन कर रहे हैं लोग, तो उनको पता नहीं कि कैसे चेतना आत्मा से आता है करके। तो यहाँ पर प्रभुपाद उसको परिभाषा दे रहे, चेतना का अवेयरनेस, द सेंस ऑफ आईनेस, मई हूँ, उसको चेतना कहते हैं। जो अनुभव होता है ना हम लोगों को, या हम लोग ही उसको अनुभव कहते हैं, हमारे अस्तित्व का जो अनुभव है हमें, उसको चेतना कहते हैं। और भौतिक जगत में ये कलुषित चेतना कैसे होता है कि मैं ही भोगता हूँ, मैं ही नियंत्रक हूँ, मेरे से सब कुछ चल रहा है, ऐसे हम लोग सोचते हैं। सो ऐसे ही दुनिया चलती है, ऐसे प्रॉपर यहाँ पर चलायमान है, ऐसे प्रॉपर वर्णन कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं परिवार चल रहा है मेरे कारण, इसलिए परिवार चलता ही रहता है ना? हम लोग नहीं है तो भी परिवार चलेगा है ना, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि मेरे से ही परिवार चलता है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग है, एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूं और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूं। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों है, और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सृष्टा है न ही भोक्ता, वह मात्र संयोगी है, वह सृजित तथा भुक्त है। उदाहरणार्थ मशीन का कोई एक अंग संपूर्ण मशीन के साथ संयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ संयोग करता है। हाथ पांव आंखें आदि शरीर के अंग है, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर है, पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती है। जड़ को सींच कर वृक्ष का पोषण किया जाता है, और उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है, क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा है, और उनके अधीनस्थ हम उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है, ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा गृहित भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की उंगलियां यह सोचे कि वे उदर को भोजन न लेकर स्वयं ग्रहण कर ले तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर है, और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के कारण ही वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास जैसा है, यदि स्वामी तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए, यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने
तथा भौतिक जगत का भोग करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये प्रवृत्तियां हैं। अतः भगवद गीता में हम पाएंगे कि भगवान ही पूर्ण है, जिनमें परम नियंता नियंत्रित जीव दृश्य जगत शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित है, और इन सबकी व्याख्या इसके मूल पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं, और यही परम पूर्ण परम ब्रह्म या परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फल स्वरूप है, वे ही पूर्ण है।
We can write it in different way also. तो यहां पर परम सत्य का परिभाषा दे रहे प्रॉपर श्री शुभनिषद में है ना, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णा पूर्णमुदश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शिष्यते। परम सत्य पूर्ण या भगवान सब एक ही है, वही श्री कृष्ण है। उनको एक पूर्ण सत्य कहते हैं या वास्तविक सत्य कहते हैं। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोर्मूलम्। तो वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम, तो वास्तव वस्तु है भगवान। तो इसका अर्थ है कि जो कुछ भी हम लोग देखते हैं वो सब कुछ उनके अंदर है, बस उनके शक्ति का ही पूरा प्रदर्शन है बस।
भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा है। ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में ही की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभावी किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है, और इसी तरह परमात्मा की धारणा भी है। 15वें अध्याय में यह देखा जाएगा कि भगवान पुरुषोत्तम निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से बढ़कर है। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है, ईश्वराय परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। गोविंद या कृष्ण सभी कारणों के कारण है, वे ही आदि कारण है और सच्चित तथा आनंद के रूप है। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सच्चित शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है, परंतु भगवान कृष्ण समस्त दिव्य स्वरूपों की अनुभूति है, सच्चित आनंद के पूर्ण विग्रह है।
तो कभी कभी ये लोग पूछते हैं ना, भगवान साकार है या निराकार है? तो भगवान निराकार है तो वो पूर्ण कैसे होंगे? हम सब लोगों को आकार है लेकिन पूर्ण में आकार नहीं है तो वो कैसे पूर्ण होंगे? उसमें कुछ कमियां हो जाएगा, है कि नहीं? तो वो समझना चाहिए। और भगवान का परिभाषा क्या है? जिनसे सब कुछ निकलता है, वही ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो उनसे सब कुछ निकलता है तो उनके अंदर रूप नहीं है तो कैसे रूप हमारे अंदर आएगा, है ना? तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन कोई कोई लोग बोलते हैं कि उनको रूप देकर आप क्या कर रहे हैं, उनको सीमित कर रहे हैं, भगवान अनंत है, ऐसे बोलते हो। तो रूप ना करके ना कहते आप लोग सीमित कर रहे हैं कि उनके पास क्या है रूप नहीं है करके उनको सीमित कर रहे हैं। उनके पास रूप भी है और साथ साथ वो अनंत भी है। तो इसलिए ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है, आद्यम पुराण अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, तो वो अनंत है, उनको रूप भी है और अनंत भी है, लेकिन कैसे वो अनंत रूप को धारण करते हैं। हम लोग अलग अलग रूप में प्रकट नहीं हो सकते हैं, लेकिन भगवान प्रकट हो सकते हैं, उसका अर्थ है अनंत। सो ये यहाँ पर जो निराकार ब्रह्म है वो भगवान के शरीर का तेज है, यहाँ पर वर्णन आ रहा है ना वो क्या है करके, तो उसको ही लोग निराकार है ना, उसको ही परम कहते हैं, लेकिन वो भगवान के शरीर से निकलता है, तो उसका वो भी भगवान से, भगवान के अधीन है। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे है दिव्य पुरुष और इसकी पुष्टि समस्त वेदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम कठोर निषेध। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः व्यक्ति है और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। यह पूर्णता रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वह निराकार है या किसी अन्य वस्तु से घटकर है तो वह पूर्ण नहीं हो सकता। जो पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभवगम्य तथा अनुभावातीत हर वस्तु से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण कैसे हो सकता है। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं, पराश शक्ति विविधैव श्रूयते। कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील है इसकी भी व्याख्या भगवद गीता में हुई है। यह दृश्य जगत या जिस जगत में हम रह रहे हैं यह भी स्वयं में पूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित है। इसमें न तो कोई विजातीय तत्व है न ही किसी भी वस्तु की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण व्यवस्था के इस क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। शूद्र जीव के लिए यह सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करे। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवद्गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सो प्रभुपाद यहाँ पर कैसे पूर्ण व्यवस्था है हम सबके लिए, लेकिन आधुनिक समाज क्या है, ऐसा एक नास्तिक धारणा के ऊपर आधारित है कि ये प्रकृति पूर्ण नहीं है, ये सृष्टि भगवान का जो सृष्टि है वो पूर्ण नहीं है। हम लोग अपने तकनीकी की और विज्ञान की प्रगति और आर्थिक विकास के द्वारा हम लोग इसको पूर्ण बनाएंगे करके, ये नास्तिक धारणा है। उसके लिए क्या होगा नतीजा, नतीजा ये विनाश होगा बस। तो ये क्या ऐसे हम लोग देखते हैं कैसे अभी समाज बन गया है, कितने सारे समस्याओं का वो लोग और बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। हम लोगों को भगवान के जो व्यवस्था है उसको स्वीकार करना चाहिए, बस सब कुछ ठीक चलता है। तो वो भगवान के व्यवस्था क्या है, वो वर्णाश्रम है, समाज में वैसे सिस्टम होना चाहिए। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ अच्युत है और सारे हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ
वो जो पांच विषय है भगवद्गीता के वो पूरा हो गए। अभी फिर प्रभुपाद अभी वर्णन करेंगे कि कैसे भगवद्गीता अपौरुषीय ग्रंथ है, कोई मनुष्य ने उसको रचना किया, वो परिपूर्ण ज्ञान देता है हम लोग, वो भगवान से ही आता है।
उदाहरणार्थ गोबर पशुमल है और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है।
लेकिन वैदिक शास्त्र में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे वेदावास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं है कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। जब अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं, अतः वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशय एवं त्रुटियों से परे है और भगवद्गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होता है, जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है।
आजकल सब कुछ ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, वो लोग संशोधन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन वो परिपूर्ण नहीं है वो, क्योंकि हमारे इंद्रिया संशोधन करने की जो इंद्रिया है वही परिपूर्ण नहीं है, तो कैसे परिपूर्ण ज्ञान को। इसलिए अलग अलग जो थ्योरी है वो हिंदी में उसको सिद्धांत बोलते हैं, लेकिन वो सिद्धांत ठीक शब्द नहीं है। तो अलग अलग धारणाएँ वो बताते, थ्योरीज ओपिनियंस वो बदलते रहते हैं लोग। तो आप जानते होंगे ना, जब हम पढ़ रहे थे 28 एटॉमिक थ्योरी थे उस समय पर, है ना, और डाल्टन ने कहा कि अणु को उसको विभाजन नहीं किया जाता है, तो फिर उसके बाद में वो लोग कुछ और लोग आ गए उसको विभाजन किए, तो ऐसे थ्योरी बदलते रहते हैं। ये संशोधन का जो ज्ञान होता है ऐसा ही है, वो कभी भी परिपूर्ण नहीं जाता क्योंकि उसका स्रोत परिपूर्ण नहीं है। तो गीता और वेद शास्त्र परिपूर्ण स्रोत से आते हैं, भगवान से आते हैं, इसलिए वो परिपूर्ण है। हमें ज्ञान को उपयुक्त स्रोत से परंपरा से ग्रहण करना होता है, जो परम गुरु साक्षात भगवान के से प्रारंभ होती है और शिष्य गुरु की यह परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है और उनका विरोध किए बिना वह कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवद्गीता की के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवद्गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए और विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे चार दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए पौरुषेय शब्दों से भिन्न होते हैं। संसारी पुरुष के दोष है, वह त्रुटियां अवश्य करता है, वह अनिवार्य रूप से भ्रमित होता है, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है तथा वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन चार दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषय पूर्ण सूचना नहीं दे पाता। ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहले पहल प्रथम श्रेष्ठ जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया, फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है और उनका प्रकृति के नियमों के वशीभूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः मनुष्य में इतना समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी है, वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्म के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपिता महा के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामह के भी सृष्टा है। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं मानना चाहिए, उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को अपना मानना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान ने अलग कर दी है। भगवान द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। इसकी भी व्याख्या भगवद्गीता में हुई है।
प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा, उसका यह उसका निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि वह अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग नहीं करना चाहता। यह निर्णय शरीर पर आधारित था क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि को अपने शारीरिक संबंध या विस्तार के रूप में ले रहा था। अतएव वह अपनी शारीरिक अवस्थाओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने भगवद्गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेश अनुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है करिष्ये वचनमतः, मैं आपके वचन के अनुसार ही कार्य करूंगा। इस संसार में
वो भगवद्गीता कैसे अपौरुष है उसको वर्णन करने के बाद प्रभुपाद यहाँ पर भगवद्गीता हमारे जीवन में क्या महत्व है वो एक पॉइंट बताते हैं। भगवान द्वारा हमारे सदुपयोग के लिए रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए इसके अनेक उदाहरण प्राप्त है, इसकी भी व्याख्या भगवद्गीता में हुई है। ऐसे कहते हैं कैसे हम क्या महत्व है हमारे जीवन में, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे कला हो सकते हैं, ऐसे गुण हो सकते हैं, ऐसे वस्तुएं हो सकते हैं, उनको कैसे सदुपयोग करना चाहिए उसको भगवान कहते हैं। और उसके बाद में प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया, उस वहाँ से प्रभुपाद भगवद्गीता का उद्देश्य क्या है, वो कैसे किस दृष्टिकोण को बदलने के लिए, अर्जुन के कौन से दृष्टिकोण को बदलने के लिए भगवद्गीता कहा गया, उद्देश्य पर्पज यहाँ पर वर्णन करते हैं। फिर इसके बाद मनुष्य जीवन का महत्व और मनुष्य जीवन में क्या कैसे भगवद्गीता महत्वपूर्ण है उसको फिर से प्रभुपाद वर्णन करेंगे।
इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्ते के समान, कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्य को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशु की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश वैदिक ग्रंथों में दिया गया है जिसका सार भगवद्गीता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ मनुष्य के लिए है, पशु के लिए नहीं। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रियों की तुष्टि के लिए पशु वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। भगवद्गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार के कर्मों का उल्लेख है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी तीन भेद है, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। इन सबका विशद वर्णन हुआ है और यदि हम भगवद्गीता के उद्देश्य का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाएगा और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त हो सकते हैं जो इस भौतिक आकाश से परे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परम मम।
तो यहाँ पर प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि समा कैसे हमारे जीवन को शुद्ध करके भगवद्गीता के उपदेशों के द्वारा हमारे जीवन को शुद्ध करके अंत में जो सर्वोच्च गंतव्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे का हम लोग कल चर्चा करेंगे। आपका कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी है? यहाँ पर प्रश्न है कि चेतना का एनेस्थेसिया से क्या संबंध है? जब एनेस्थेसिया दिया जाता है तो वहाँ पर चेतना नहीं रहता है ना, लेकिन तो मुंडक उपनिषद में वो वर्णन आता है ना कैसे जीवात्मा अलग अलग वायुओं में तैर रहा है, वो दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक के तात्पर्य में श्लोक प्रपद उसको उल्लेख करता है, ये शनोरात्मा वेदितो चेतसो वेदितव्यो यस्मिन प्राण पंच, क्या है श्लोक। तो उस श्लोक में वर्णन आता है कि जीवात्मा इन पांच वायुओं में ठहर रहा है, बोलते हैं वो हृदय के भाग में है, लेकिन हृदय का भाग नहीं है वो, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिकल बॉडी। सो ये पांच वायुओं में वो तैर रहा है। तो इसका अर्थ है कि कैसे चेतना सब जगह फैलता है शरीर में, वो ये पांच वायुओं के द्वारा सब जगह फैलता है, क्योंकि ये सब सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर और आत्मा के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, यू नो इंटरैक्शन क्या बोलते हैं हिंदी में, तो ऐसे वो परमात्मा के व्यवस्था से ऐसे इंटरैक्शन होता है, तो वायु के द्वारा पूरा वो शरीर में फैलता है। सो और फिर आधुनिक विज्ञान भी बोलता है ना कि ये जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स वो ऑक्सीजन को पूरा शरीर में लेकर जाते हैं, तो ऐसे क्या होता है खून के द्वारा पहले वायु, फिर वायु खून के द्वारा सब जगह फैलता है, ऐसा हो सकता है। तो लेकिन ये तो सत्य है कि सब जगह वायु के द्वारा, ये पांच वायुओं के द्वारा वो पूरा शरीर में फैलता है। तो इनको हम लोग कुछ अवसर देकर उनको बंद कर सकते हैं, तो तब वहाँ पर चेतना का अनुभूति नहीं रहता है, वो एक एनालिसिस है। मुंडक उपनिषद के अनुसार ऐसे हम लोग समझ सकते हैं उसको। इसलिए ना कभी कभी ऐसे होता है कि व्यक्ति ये वो लिजर्ड होता है ना, उसको जो पूंछ को काट दिया तो उसमें अभी भी कुछ समय तक क्या होता है, तो वो उसका जीव का लक्षण दिखाई देते हैं वो ना, वो शरीर से अलग हो गया है फिर कैसे जीव का लक्षण दिखाई देते हैं, और लंबे समय तक नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं लेकिन दिखाई देता है, शरीर इन वायुओं के द्वारा संचालित हो, मीन्स वायु शक्ति देते हैं शरीर को चलाने के लिए, शरीर को कार्य करने के लिए। ये हम लोग मुंह खोलते हैं, आंख बंद करते हैं, ये सब वायुओं के प्रभाव के द्वारा होता है, और वायुओं को शक्ति कहाँ से मिलता है, आत्मा के द्वारा मिलता है। तो कुछ समय तक वो वायु उसके कारण उसमें जीव का लक्षण दिखाई दे, क्योंकि वायु को शक्ति का संचालन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो शरीर से अलग हो गया वो भाग, तो उसके कारण कुछ समय तक वो वायु उसको चलाया, फिर उसके बाद बंद हो गया। तो ऐसे वो सूक्ष्म शरीर, ये वायु क्या है, सूक्ष्म शरीर का अंग है, तो ऐसे सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का इंट्रैक्शन होता है, हम लोग कुछ औषध वगैरह देके उसको रोक सकते हैं, दैट इज वन एनालाइज, ऐसे समझ सकते हैं। और दूसरा है उस समय पर चेतना सुषुप्ति अवस्था में होता है, चेतना का भी अलग अलग अवस्थाएं होते हैं, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। सो जागृत चेतना का अर्थ है अभी हम लोग जागृत है, और जागृत अवस्था से हम लोग स्वप्नावस्था में जाते हैं, और स्वप्नावस्था में जाने के बाद फिर सुषुप्ति, सुषुप्ति मतलब गहरा नींद, और फिर वापस जागृत अवस्था में आने के लिए सुषुप्ति से स्वप्नावस्था में जाते हैं, स्वप्नावस्था से फिर से जागृत अवस्था में। इसलिए लोग सुबह सुबह स्वप्न देखते हैं, रात को भी देखते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं नींद में, तो थोड़ा बहुत याद रहता है सुबह का जो स्वप्न है। तो जागृत अवस्था में दोनों सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों क्रियाशील रहते हैं, और स्वप्नावस्था में सिर्फ सूक्ष्म शरीर क्रियाशील रहता है, लेकिन स्थूल शरीर वो निष्क्रिय रहता है, और सुषुप्ति में दोनों सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों निष्क्रिय रहते हैं। तो ऐसे हम लोग वो एनेस्थेटिक कंडीशन मीन्स आइदर इट इज सुषुप्ति और इट इज स्वप्न. इट कैन बी स्वप्न ऑल्सो. दैट्स वाई पीपल समटाइम दे हैव आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस एंड ऑल बिकॉज दे कैन यू नो सटल बॉडी कैन कम आउट एंड ऑब्जर्व व्हाट डॉक्टर्स आर डूइंग विद द बॉडी एक्चुअली. गॉट दैट? तो ऐसे होता है. हाँ या वैसे ही वही उदाहरण भगवान ने भी बाद में बोलते हैं ना. तो बाद में भी वायु और नावा नहीं हुआ वायु और गंधान हो बस
पहले फैलती
है या वैसे तो वायु उसको लेकर जाते चेतना को लेकर जाते. तो बाद में भी वही उदाहरण 15वें अध्याय में भगवान वही बताते हैं कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में ये चेतन युक्त जीव स्थानांतरित होता है. उसके लिए उदाहरण वायु कैसे अलग अलग जो सुगंध को लेकर जाती है ना वैसे ही उसका उदाहरण दिया.
जब दूसरे शरीर में जाती है तभी वो सुगंध भी साथ ही जाती है तभी
के सुगंध जैसे
हाँ जैसे जैसे बताओ
है ना
तो
वैसे ही पांच प्राण अपान व्यान उदान एंड समान ऐसे पांच वायु है और पांच भी है. वो भागवत में वर्णन आता है और पांच भी ये सब कारण है हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करने के लिए. आंख बंद होना खोलना सब कुछ इससे चलता है. लेकिन उसके पूरा वायु को कहाँ से शक्ति मिलता है? आत्मा से मिलता है. आत्मा नहीं है तो वायु भी नहीं चलेगा. तो वायु आत्मा पहले जी निकलती है फिर वायु कुछ समय तक वहाँ पर रहता है. इसलिए हम लोग देखते हैं ना वो लोग मृता है या जीवित मृत है या जीवित है वो वायु से देखते हैं. हाँ वो वायु का ही ये है. वो पैरालिसिस क्या है वो आयुर्वेद में उसका वर्णन आता है. इट्स अ वायु रोग इट इज. तो दोज एयर्स आर नॉट एक्टिंग प्रॉपरली इसलिए चेतना वहाँ पर फैल नहीं रहा है.
लेकिन
हाँ वो जस्ट यू कैन एडजस्ट ईयर्स. वही ट्रीटमेंट है. आयुर्वेद का ट्रीटमेंट भी वही है. कपोवात फित वात मतलब वायु को ये क्या करना आयुर्वेद वायु को ही वो क्या करते हैं उसको बैलेंस करते हैं उसको. नाइस ना. तो ये सब आप गहराई में हम लोग ये सभी समझेंगे ना बहुत कुछ समझ सकते हैं. उपनिषदों में वगैरह बहुत कुछ है. वो सबसे निकट है यार. भगवान जो परमात्मा है आत्मा के लिए सबसे निकट है. तो कोई भी उतना निकट नहीं है. हम लोग बोलते हैं ना अपने सगे निकट के सगे संबंधी बोलते हैं. भगवान के जैसे निकट कोई अन्य कोई नहीं है. कितना डिस्टेंस है हमें पता नहीं. इसका वर्णन हम लोगों ने सुना नहीं है तो कहीं पर. लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि वो बहुत ही निकट है. और
ये हार्ट ट्रांसप्लांट का बहुत बार स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं तो भी पांच वायु से संबंधित.
व्हाट इज द प्रॉब्लम इन हार्ट ट्रांसप्लांट? क्या समस्या है उसमें? तो क्या होता है? जरूरी नहीं है. इसलिए हृदय काम नहीं कर रहा है दूसरा हृदय डालते तो फिर से जीवित हो जाते ना है ना. इसलिए वो हृदय के ऊपर निर्भर नहीं है वो आत्मा के ऊपर निर्भर है. आत्मा नहीं है तो आप हृदय बदलो कुछ करो कुछ भी नहीं होगा है ना. ठीक है ना, हृदय ठीक है तो भी आत्मा नहीं है, तो ऐसा कभी भी बहुत सारा होता है। कुछ लोगों का हृदय ठीक रहता है फिर भी वो मृत रहता है।
डॉक्टर बोलते हैं कि मृत्यु के थोड़े समय के बाद अगर हार्ट को निकाल के दूसरे व्यक्ति में डाल दिया जाए तो हार्ट अच्छे से काम करेगा और वो व्यक्ति सही सही है, लेकिन चेतना तो
या लेकिन आत्मा को ट्रांसप्लांट नहीं क्लियर कर रहे ना, है ना। कैसे आप जानते हैं कि वो मर गया, कैसे आप बताते हैं कि वो मर गया करके? सिर्फ वो वायु नहीं है, इसलिए वास्तविक मृत्यु क्या है, आत्मा वहां से निकल जाते है उसका मृत्यु कहते हैं। उसका हम लोगों ने परिभाषा देखा, समझ लिया ना। तो कैसे आप समझेंगे कि आत्मा है या नहीं है? उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणान्वितम विमुडानानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। उत्क्रामंतम मतलब जो निकल गया आत्मा, स्थितम वो वहां पर स्थित है, वो जो ज्ञान चक्षु नहीं है वो लोग समझेंगे नहीं उसको, हम और आप नहीं समझ सकते उसको, आपके डॉक्टर नहीं समझ सकते क्या आत्मा वहां पर उपस्थित है या नहीं है, उसको समझ नहीं सकते हम लोग। आप अपने भाषा में अपने शब्दों में कह सकते हैं क्योंकि वो श्वास नहीं ले रहा है इसलिए वो मृत है करके, लेकिन वो सुषुप्ति अवस्था में रह सकता है ना। कोमा का स्टेज क्या है? वो स्वप्न अवस्था सुषुप्ति अवस्था है ना, जहां पर चेतना ज्यादा क्रियाशील नहीं है। ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट डेड है वो आत्मा संघर्ष करता रहता है क्योंकि शरीर से आसक्ति रहती है, वो छोड़ना नहीं चाहता है लेकिन उसको छोड़ना होता है, उसको एक कोमेटिक स्टेज रहता है, संघर्ष करता रहता है और थोड़ा समय रहूं इस शरीर में करके।
जैसे कहा कि
हृदय में, मतलब इसका अर्थ नहीं है कि वो आत्मा हृदय में स्थित है, इसका अर्थ नहीं कि वो हृदय का भाग है, क्योंकि ये हृदय क्या है, ये भौतिक वस्तु है, ये भौतिक शरीर का एक अंग है, आत्मा आध्यात्मिक है, उससे वो संयोजित नहीं होता, मिक्स नहीं होता है, और इसका नहीं कि वो अंग उसका भाग है, वो हृदय के रीजन में है, हृदय के उस भाग में रहता है। तो हृदय को आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उससे क्या लेना देना, आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है, है ना। और कुछ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। या क्या प्रॉब्लम है इसमें? वो शरीर का अंग उसके दूसरे व्यक्ति का शरीर के जो अंग ठीक नहीं है, वो जो ठीक अंग को उसको वहां पर रिप्लेस कर रहे है, बस है ना, उसे आत्मा से क्या लेना देना। आप जानते हैं सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, हार्डवेयर ठीक नहीं है तो हार्डवेयर को रिप्लेस कर रहे है, बस है ना।
उसको रखा नहीं भाग निकाल के रख दिया
नहीं, क्या समस्या क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मृत व्यक्ति में वो डाल दिया तो फिर से जीवित होता, ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा डालते जाओ ना, सबको मृत्यु से जीवित करो ना, है ना? ठीक है, हरे कृष्ण।